ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा क्यों आए हैं और कहां आए हैं, क्या करने लिए आए हैं, आज बाबा ने उनका उत्तर दिया है। क्यों आए हैं? बच्चे जो कांटे बन गए हैं उनको फूल बनाने आए हैं। कांटे क्या करते हैं, एक दो को दुख देते हैं ना, तो हम सब कांटे थे, एक दो को दुख देते थे, तो बाबा आया है कांटों को फूल बनाने। और कहां आए हैं, फूलों के बगीचे में आए हैं ना बाबा, फूलों के बगीचे में। तो ये क्या है, ये फूलों का बगीचा है। तो कांटों से फूल बनाने के लिए ये बगीचा है, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये बगीचा है, मनुष्य से देवता बनने की एक लंबी यात्रा है। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, कांटे से फूल बनने की क्या प्रक्रिया है, मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या रास्ता है, क्या विधि है, वो सब बाबा बताते हैं। तो इसलिए बाबा पूछते हैं अभी कहां पहुंचे हो, कहां पहुंचे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। पहले तो पाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, फिर पावन बन करके घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले फरिश्ता बनना है, फिर घर जाना है, फिर आके देवता बनेंगे। और देवता बनने के लिए भी लक्ष्य है कि लक्ष्मी नारायण बनना है। तो कितना हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, तो आज बाबा ने वो पुरुषार्थ हम कितना कर रहे हैं वो अपने आप से पूछो, बाबा कहते हैं। और देवता बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पर खुशी गायब क्यों होती है, इतनी खुशी बाबा हमें देते हैं पर गायब क्यों होती है, वो भी बाबा ने आज बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 30/6/2025 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। क्यों आए हैं बाबा, तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें अब कांटा नहीं बनना है, कांटा क्या करता है, एक दो को दुख देता है ना, तो तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। भगवान की ये सभा है, इसमें केवल फूल ही बैठेंगे। बाबा कहते हैं इंद्रप्रस्थ है ये, इसमें परियाई बैठती है। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं ना याद की यात्रा में, तो जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी, निशानी क्या होगी। बहुत निशानियां होगी, एक निशानी आज बाबा ने बताई है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। अगर खुशी गायब है इसका मतलब बाबा की याद भी गायब है। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापिस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली खुशी हमारी बढ़ती जाती है। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी है। बागवान तो शिव बाबा है, माली कौन है? ब्रह्मा बाबा है, या कहेंगे जो सेंटरों पर बहने रहती है वो भी बगीचा बनाती है, तो वो माली है। और फूल कौन? जो कांटे से फूल बनते हैं। तो बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। ये नई बात है ना, कोई नया अगर सुने तो कहेगा ये क्या कहते हैं, हाँ बागवान, फूल, माली, ये क्या कहते हैं, ये तो क्लासरूम है, या तो ज्ञान सुना जाता, ये बागवान और कांटे और फूल और माली ये कहाँ से आ गया। तो बागवान, फूल आदि ये क्या है? अब ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं है, इसलिए उनको ये नई बातें लगती है। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहां आए हैं यहां से पार ले जाने। बाबा क्यों आए हैं? खेवैया है तो यहां आए हैं यहां से पार ले जाने। तो बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, कोई और नहीं देखेगा आपको, अपने को आप ही देखो। हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना दूर जा चुके हैं, मंजिल के कितने नजदीक है, कितना दूर जा चुके हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं, ये देखो अपने में, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे, क्या समझेंगे, कि अभी हम लौट रहे हैं। अभी तक इतना नहीं समझ रहे हैं कि हम लौट रहे हैं, लेकिन जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तब समझेंगे कि हम अभी लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो सारा मदार है याद की यात्रा पर, और खुशी भी चढ़ी रहेगी, याद की यात्रा से खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। अगर नहीं मेहनत करते माना खुशी भी नहीं होगी। तो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कहाँ तक हम पार हो चुके हैं, कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं, हम बन रहे हैं पर उतना फिर औरों को खुशबूदार फूल बनाते हैं। ये गाया ही जाता है कांटों का जंगल, ये दुनिया कांटों का जंगल है और वो है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा जब कराची में थे तो वहाँ जो माली था वो मुसलमान था, तो वो ध्यान में जाता था, और ध्यान में जाता था तो कहता था मैं अल्लाह के बगीचे में गया और अल्लाह ने मुझे फूल दिया। तो बाबा कहते हैं मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं, मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि फूल उठाकर कोई देते हैं, आप बगीचे से फूल तोड़ करके ऐसे देते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। जैसा जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं, बाबा यहाँ साक्षात्कार को महत्व नहीं देते, इसलिए यहाँ पर वो बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट लेते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ तो उनका कितना मान है, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान तो है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा झाड़ है। और ज्ञान, भक्ति का बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा झाड़ है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो, ये तुम्हारा बगीचा है। हम सब आज बगीचे में बैठे हैं, ये तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, चलो कली कहेंगे। यह प्रोसेस चल रहा है, कांटे से कली बने होंगे, कली से फूल बन रहे हैं, पर कांटा तो कोई नहीं होगा। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में तो कोई जाते नहीं। बाबा के बच्चे बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो यहाँ कोई विकारी तो आकर बैठेगा नहीं बाबा के सामने। यहाँ विकार में तो कोई जाते नहीं, तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे ना, एक भी कांटा नहीं इस बगीचे में, क्योंकि सब पवित्र बैठे हैं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? कांटे तो कलयुग में हैं, इसमें कांटा कहाँ से आया पुरुषोत्तम संगम युग पर? अगर कोई कांटा है, समझो कोई कांटा बैठा भी है, तो बाबा कहते हैं अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि इंद्र सभा है, इस इंद्र सभा में तो कोई कांटा नहीं होना चाहिए ना, सब परियां ही होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना, इसमें ज्ञान परियां बैठी है। तो हम सब कौन है? पहले बाबा ने कहा फूल बैठे हैं, फिर बाबा कहते सब ज्ञान परियां बैठे हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां। सब कौन है? ज्ञान डांस करने वाली परियां। तो मुख्य मुख्य के नाम भी बाबा लेते हैं, पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि। हाँ, ये सब परियां दिखाते हैं। वही फिर नवरत्न गाए जाते हैं, जो नवरत्नों की माला बनते हैं उसमें ये अलग अलग मणियां पड़ती हैं, फिर वो नवरत्न गाए जाते हैं। परंतु ये कौन थे ये किसको भी पता नहीं है। तो बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है, तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप ने समझाया है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। हम सब ने 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, कितना सहज है, कोई मुश्किल नहीं है ये बातें समझना। कितना सहज है। भगवानुवाच बच्चों प्रति, क्या है भगवानुवाच बच्चों प्रति? माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटा नहीं बनो, कांटा नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, कांटा नहीं। हाँ कांटा नहीं है, फूल है, लेकिन बाबा कहते हैं हाँ माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, माया छोड़ेगी नहीं, ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने ये क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई, माया ने फंसा दिया तो फिर क्या होगा? फिर खुद ही पछताएंगे और कहेंगे हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। ये है बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, है ना? राष्ट्रपति भवन के पीछे बड़ा सुंदर बगीचा है, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल है, नए नए प्रकार के फूल है। तो जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने, खास फरवरी मार्च ये दो महीना, एक महीना शायद खुला रहता है या 15 दिन, तो बहुत जाते। इस बार हम दिल्ली गए थे तो खास वो गार्डन देखने गए थे, बहुत अच्छे, इतने सुंदर सुंदर फूल वहां लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सब जाते हैं देखने, यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। अब सबसे सुंदर बगीचा तो ये है, वो उस बगीचे में तो सब जाते हैं देखने, पर इस बगीचे में कौन आएंगे देखने? ये तुम्हारे पास को, यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब यहाँ फूलों का बगीचा है तो कांटों को तुम क्या मुंह दिखाएंगे? कांटे भी यहाँ क्यों आएंगे? तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? गायन भी है मूत पलीती कपड़ धोए, सब मूत पलीती विकारी है। बाबा को जब साहेब सुखमणि आदि सब याद थी, बहुत बाबा ने ये जब साहेब सुखमणि ग्रंथ भी बाबा ने बहुत पढ़ा, गीता भी बहुत पढ़ी, बहुत शास्त्र पढ़े, तो बाबा अपने बचपन की बात सुना रहे हैं। अखंड पाठ भी करते थे, बाबा को जब साहेब सुखमणि आदि सब याद थी, अखंड पाठ भी करते थे, अखंड पाठ करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, जैसे सरदार बांधते ना। रहता ही मंदिर में था, गुरुद्वारे में रहता होगा, मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अब गांव में तो छोटा सा होगा गुरुद्वारा या मंदिर, तो बाबा कोई चार्ज दी गई थी, मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है, ये ग्रंथ में आता है मूत पलीती कपड़ धोए। तो बाबा कहते अभी अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या है? महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं बच्चे यहाँ अच्छे अच्छे फूल लाओ। मालियों को बाबा कहते हैं, टीचर्स को कहते हैं मधुबन में बाबा के पास अच्छे अच्छे फूल लाओ, जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सुना टीचर्स, जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए, सब हाथ उठा तो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो लक्ष्मी नारायण तो बहुत खुशबूदार फूल है। तो बाप कहते अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, तुम खुशबूदार फूल बने हो, गुरु लक्ष्मी नारायण बनोगे, तुम्हारे मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो, सदा गुलाब। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। अगर राजा भी कोई वजीर रखे और बार बार वजीर से राय ले, तो वजीर बड़ा हो गया ना, ज्यादा बुद्धिमान तो वजीर हो गया, राजा तो इतना बुद्धिमान नहीं होगा, इसलिए बार बार वजीर से राय लेगा। तो नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार ही नहीं है। वजीर आदि तब होते हैं, कब होते हैं वजीर, जब पतित होते हैं। भिखारी राजा बनते हैं, तब पतित बनते हैं, तो फिर वजीर की जरूरत पड़ती है। ये भारत की ही बात है, और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो। राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो, ये और कहीं भी कोई भी देश में या किसी भी खंड में या धर्म में नहीं है, केवल भारत में ही है। वहां जो माथा टेकते हैं राजाएं भी, तो वो तो सेंट्स को माथा टेकेंगे या क्राइस्ट को माथा टेकेंगे, जो उनके प्रिसेप्टर्स हैं या धर्म स्थापक हैं, परंतु कोई ऐसे महाराजा को नहीं माथा टेकेंगे। पर भारत में राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं। कौन से राजाएं? जो सतयुग के राजाएं, वो भी तो राजाएं होंगे ना, महाराजाएं, उनको माथा टेकते हैं द्वापर कलयुग के राजाएं। तो बाबा कहते हैं और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य और अज्ञान मार्ग में पुजारी। वो डबल ताज, वो सिंगल ताज, सतयुग त्रेता में डबल ताज, फिर द्वापर युग से सिंगल ताज, केवल राजाई का ताज, पवित्रता का ताज खत्म। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, पैराडाइज बहिष्ठ था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, बागवान आया है, माली भी है, माली भी नंबरवार होते हैं, है ना, सब नंबरवार है। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचे बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे तो दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वो है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाबा को हम कितना प्यार करते हैं। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं बाबा भी बच्चों को। ये पढ़ाई है, बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ। आप जो पढ़ते हो वो फिर औरों को पढ़ाओ, तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। भारत वैसे ही सब, कोई भी खंड में ऐसे दानी नहीं होते जिस प्रकार भारत में है। तो भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो, सबको ज्ञान दान देते हो, तो इसीलिए महादानी भारत बनाए। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो, तो बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, ज्योति स्वरूप है और ज्ञान का सागर है, तो रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वो अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए गाया जाता है ज्ञान का सागर केवल एक बाप है। इसीलिए उस ज्ञान के सागर के लिए क्या गायन है कि सारा समुद्र स्याही बनाओ, तो भी खूटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। इतना ज्ञान बाबा देते, इतना ज्ञान जो सागर को स्याही बनाओ तो अभी खूटेगा नहीं। और फिर कहेंगे सेकंड में जीवन मुक्ति, केवल सेकंड में ज्ञान समझ आ जाता है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे भक्ति मार्ग में तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते हैं, तो वो बचपन से ही कोई उस समय नहीं सीखे, वो पूर्व जन्म से जैसे सीख के आए हैं। तो छोटेपन से फिर वो अध्ययन कर लेते हैं, तुम संस्कार नहीं ले जाते हो। अब ये अंतर है, वहां तो भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र पढ़े और शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में वो संस्कार ले जाता है, तो बचपन से ही वो संस्कार इमर्ज होते हैं, श्लोक लोक रच सुनाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं तुम ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाओगे, यहाँ इतना ज्ञान सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन फिर ये ज्ञान मर्ज हो जाएगा। वो ज्ञान का जो प्रैक्टिकल स्वरूप गुण और शक्तियां हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में आएगी, ज्ञान नहीं होगा जैसे यहाँ है। तो बाबा कहते हैं अब तुम ये संस्कार नहीं ले जाते हो, ज्ञान देने के संस्कार या ज्ञान लेने के संस्कार ऐसे नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। पढ़ाई नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई फिर रिजल्ट निकलेगी और वो पद पा लेंगे। तो जो पद है वो रिजल्ट है इस पढ़ाई का। ज्ञान थोड़ी ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे, यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलती है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, बहुत समझाया है, तो अभी क्या समझा रहे हैं बाबा, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है कौन सी, माया को शक्ति कौन सी है और प्रभु को शक्ति कौन सी है। तो बाबा कहते हैं माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, गिराने की, दुखी करने की, कांटा बनाने की, ये माया में शक्ति है। तो दुर्गति में ले जाने की शक्ति माया में है, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। अब जो दुर्गति में ले जाए, जो गिराए, जो कांटा बनाए, जो दुखी बनाए, उनकी महिमा थोड़ी करेंगे, तो उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। वो तो दुख देने में शक्तिवान है, माया क्या है, दुख देने में शक्तिवान। तो बाप तो सुख देने में शक्तिवान है, इसलिए उनका गायन है। जो सुख देता है उनका गायन होता है, जो दुख देता है उनका गायन थोड़ी होता है। इसलिए उनका गायन है क्योंकि वो शक्तिवान सुख देता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, भगवान सुख देते हैं माया दुख देती है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हाँ, कोई कह रहे क्यों सुख बाबा देता है फिर क्यों माया आती है, क्यों दुख होता है, तो बाबा कहते ड्रामा ये खेल है, तुम सुख भी उठाते हो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इसका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है, ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर के किया था, नाम निशान ही गुम कर दिया है। केवल शिव जयंती मनाते हैं, पर शिव जब आया तो क्या आकर के किया, कब आया, बाबा कहते नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलविड बाप की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। बिलविड बाप है ना बाबा, तो उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो निराकार और वो साकार। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्णम, और शिव बाबा की तो ये महिमा नहीं करेंगे, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण, ये शिव बाबा की तो महिमा इस रूप से नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, देखो अंतर बताए, सर्वगुण संपन्न है तो सत्युग में सर्वगुण संपन्न है, फिर द्वापर कलयुग में आते हैं तो फिर अवगुण आते हैं, तो जिसमें गुण है उसमें फिर अवगुण भी आ सकते हैं, लेकिन शिव बाबा की महिमा इस रूप में नहीं है, क्योंकि वो तो सागर है गुणों का सागर, वो कभी अवगुण तो उसमें आता ही नहीं है। तो जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसीलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना, हम भी अकाल मूरत है, आत्मा भी अकाल मूरत है, काल नहीं खाता आत्मा को भी, आत्मा को काल खा नहीं सकता, आत्मा अकाल मूरत का ये तख्त है। हाँ तख्त है ये, हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है, काल तो शरीर को ही खाता है, यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं, सत्युग में नहीं बुलाएंगे अकाल मूरत को। क्यों क्यों सत्युग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है, अकाल मूरत को कहाँ बुलाएंगे जहाँ दुख है। इसीलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं है। जैसे हाँ बाबा ने बहुत सुंदर मिसाल दिया है, जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को बड़ा किया गुणवान बनाया लायक बनाया, फिर उनको सब कुछ दे करके फिर वानप्रस्थ लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं। लौकिक बाप ऐसे कहेगा, हाँ अभी हम सत्संग में जाते हैं तुम सब संभालो, कुछ खाने के लिए भेजते रहना, बच्चे को बाप कहेगा मैं तो सत्संग करूंगा अभी तुम मुझे खाने को कुछ भेजना। अब बाबा तो ऐसे नहीं कहेगा ना मुझे खाने को भेजना, हाँ शिव बाबा वानप्रस्थ में चला जाएगा परमधाम में हमको स्वर्ग में भेज करके हम सुखी हो जाएंगे, फिर बाबा थोड़ी कहेगा बच्चे तुम मुझे कुछ खाने को भेजना परमधाम, लौकिक बाप तो कहेगा ना मुझे कुछ खाने को भेजना, तो ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेगा ना, ये तो कहेगा, ये क्या कहेगा शिव बाबा क्या कहेगा, ये तो कहेगा, ये तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चला जाऊंगा, वाणी से परे चला जाऊंगा, फिर वहां तुम मुझे कभी याद भी नहीं करोगे। हम थोड़ी कहेंगे कि खाने के लिए भेजना परम धाम में शिव बाबा को खाने के लिए भेजना, ऐसे थोड़ी बाप कहेगा खाने के लिए भेजना, लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना। हाँ बाबा भी बताते हैं ना कि जब मेरा बाप बूढ़ा हुआ, माँ तो बचपन में गुजर गई थी, लेकिन जब बाप बूढ़ा हुआ और ये धंधा करने लगा तो बूढ़ा तो हो गया था, तो बाप ने बच्चे बाबा को कहा कि अब मुझे काशीवास कराओ, क्योंकि काशीवास करते जब बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ काशी में जाके रहते हैं, मुझे काशीवास कराओ। तो बाबा अपने पिता को काशी में ले गया था, बनारस ले गया था, वहाँ एक मकान लेकर के दिया और नौकर चाकर सब रख के दिए, तो कहा कि अभी ये सब तुम्हारी संभाल करेंगे और मैं तुमको पैसा भेजता रहूंगा। तो अपने पिता को काशीवास कराया बाबा ने, एक बार मुरली में कहा था। तो बाबा कहते हैं ये तो बाबा ऐसे बाबा शिव बाबा तो नहीं कहेगा कि मुझे वहां भोजन भेजना या मुझे वहां पैसे भेजना खाने के लिए भेजना, लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप को संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे लौकिक बाप। ये बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबा शिव बाबा को नहीं चाहिए हमारा धन दौलत, ये बाप तो कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, अगर कहे भी ना कि मुझे महिमा नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मैं तो बस सेवा करूंगा, गुप्त दान करूंगा, कितना भी कहे लेकिन फल तो मिलेगा उसको। इसलिए मनुष्य आत्मा कोई भी निष्काम सेवादारी है ही नहीं, भले कई कामना नहीं है पर मिलता जरूर है। इसीलिए निष्काम सेवादारी केवल भगवान है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए चलो निष्काम हो और कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो भूख मर जाए, भूखा मर जाए, खाने को तो उसको चाहिए ना। हम थोड़े भूख मरेंगे, शिव बाबा भूख नहीं मरेगा अगर हम उनको को नहीं भी उनको नहीं देंगे। हम तो अभोक्ता है, बाबा भोक्ता है। तो तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, बस वान परस में चले जाते हैं, फिर तो कोई भगवान को याद भी नहीं करता। लेकिन द्वापर युग में दुख में याद करते हैं, लेकिन भगवान तो कहीं मिलता नहीं, ढूंढते ही रहते हैं ढूंढते ही रहते हैं, जब तक बाप खुद न आए अपना परिचय न दे तो ढूंढते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है। परम धाम में जब वापस बाबा जाते हैं फिर शिव बाबा का पाठ ही बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। हीरो एक्टर का पाठ सबसे जास्ती होता है तो उसकी उसको जो धन मिलता है पैसा मिलता है वो भी सबसे जास्ती मिलता है ना। जो दूसरे दूसरे रोल बजाने वाले होते हैं उनको हीरो एक्टर से तो कम मिलता होगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है तो तुमको इजाफा भी सबसे जास्ती मिलना चाहिए, प्राइस भी सबसे जास्ती मिलनी चाहिए। मैं तो आराम करता हूँ, शिव बाबा आराम करता है, तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा हो जाता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो, इसलिए कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तो भगवान ने अपने आप को छिपा देता है स्वर्ग रच करके। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो, तुम हो ज्ञान के फूल। अब फूल भी हो तो कौन से फूल हो, ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी नहीं है ज्ञान का फूल, सब कांटे ही कांटे हैं। तो रात दिन का फर्क है, वो रात में है तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, पेड़ लगाते हैं ना, वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान कौन सा उत्सव करते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। मनुष्यों का वन उत्सव माना कांटे जो बन गए मनुष्य उनको फूल बना रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता और रंक को राव राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, क्या करने आए हो, बेहद के बाप से सौदा लेने आए हो। कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ, ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। शिव बाबा कितना अच्छा ग्राहक है, तुम रंक बन के जाते हो बाबा के पास और बाबा तुमको राव बनाता है राजा बनाता है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। बाबा जो देते हैं इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वो है सुख देने वाला। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, है ना, भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब भगवान ही आके बताते हैं मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो बाबा कहते साक्षात्कार आदि भी मैं कराता हूँ। अब बाप समझाते मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे रोज रोज हर मुरली में कितनी नई नई गुहिया बातें बाबा समझाते रहते हैं, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखरीन क्या होगा, समझाते समझाते बाबा कहते आखरीन अंत में तुम नंबर वार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर समझाना भी बंद हो जाएगा। आखिर अंत में तुम नंबर वार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है, बाप को याद करो, बाबा को याद करो, पुरुषार्थ बाबा कराते रहते हैं। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे भगवान उवाच, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो, भारतवासी रहोगे तो विश्व पर फिर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है, तो ये भी खेल है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। कैसे ये खेल चलता है, बाबा कहते मूंझने की तो बात ही नहीं है, माया तूफान में लाएगी। तो बाबा समझाते हैं माया तूफान में लाएगी तो क्या करो, माया तूफान में लाएगी, खुशी गायब करेगी, हाँ दुख देगी, तो तुम क्या करो। बाबा कहते तुम माया से डरो नहीं, डरो नहीं, हाँ डर जाते हैं ना कहीं, तो बाबा कहते माया से डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे, वो भी तब जब बाबा की गोद लेंगे, और ही गंदे संकल्प आएंगे। आप कहीं कहेंगे अरे बाबा की गोद ली और गंदे गंदे संकल्प आते हैं, तो ये माया परीक्षा लेती है, वो भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी, भगवान की गोद में जाएंगे तो माया कहेगी ना तो मेरी गोद में बैठे थे तो मेरी गोद से उतरकर भगवान की गोद में क्यों गए, हाँ तो फिर माया लड़ेगी। तो जब तुम गोद ही नहीं, जब तक गोद ही नहीं ली है बाप की तो माया इतना नहीं लड़ेगी, गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, इसलिए बाप कहते हैं गोद लेने के बाद ही तूफान आएंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए, गोद भी बाबा की संभाल कर लेनी चाहिए, कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजा ही पद पाना तो अच्छा है ना, हाँ कोई कहेगी जब ये बाबा के बनते तो और ही माया ज्यादा तंग करते, इसलिए बाबा के बनेंगे ही नहीं, अब बनेंगे नहीं तो क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ खाली जाएंगे। और बाबा की गोद ली भले माया तंग करे, डरो नहीं, और फिर बाबा कहते तुमको राजाई मिलेगी, राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, वो भी बाबा याद दिलाते, सब नंबर वार है, पुरुषार्थ भी सबका नंबर वार है, क्योंकि सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, क्या बनना है, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ाई पढ़ानी है, जो खुद पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है, अपने आप से पूछना है, क्या पूछना है, अपने आप से मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प रूपी कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, ये सब क्या है? दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों के तरफ आकर्षित होना, ये सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को क्या करो, दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले का हार, गले की माला है। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। बाबा इतना स्नेह देता, हम बाबा को स्नेह का रिटर्न क्या देते? सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, स्थिति का स्तंभ, बाबा के जो अंतिम साल 68-69 बाबा यही कहते थे, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बनना है, सारे विश्व को शांति का दान देना है, प्रकाश स्तंभ बनना है, शक्ति स्तंभ बनना है, सुस्तंभ बनना है। तो जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, इसलिए ब्रह्मा बाबा का यादगार शांति स्तंभ है, शक्ति स्तंभ है, ज्ञान स्तंभ है, तो पवित्रता स्तंभ है। ये बाबा खुद ये स्तंभ बने तो यादगार भी उनका बना। तो जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्तंभ क्या करता है? सबको लाइट देता है, शक्ति देता है। तो ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। साधन जो मिलते हैं वो सेवाओं के लिए है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, है ना? एटम बॉम्ब अगर फेंकते हैं तो उसका रेडिएशन चारों ओर फैलता है ना, तो एटम बॉम्ब एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं। वो एटम बॉम्ब है और ये हमारा कौन सा बॉम्ब है? आत्मिक बॉम्ब है, हमारा आत्मिक बॉम्ब है। इसका प्रभाव, जैसे वो एटम बॉम्ब का प्रभाव चारों ओर फैलता, तुम्हारा आत्मिक बॉम्ब का प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, संगठित रूप में आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाओ। स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। कैसे होगा पावरफुल वायुमंडल? स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। तो आज जून महीने का अंतिम दिन है, तो आज 30 तारीख मम्मा का और माँ की विशेषताएं निरंतर योग निष्ठ के गुण द्वारा सहज योग की शक्ति का निर्माण। निरंतर योग निष्ठ के गुण द्वारा सहज योग की शक्ति का निर्माण। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, वे निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। स्वतः निरंतर योगिन थी। मम्मा कभी ऐसे आंख उठा करके ऐसे 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 नहीं देखती थी। मम्मा की आंख देखी न सदा जैसे नीचे, बस बाबा की याद में। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, वे निरंतर सहज व स्वतः योगिन थी। मन मना भव मध्याजी भव के मंत्र को स्वाभाविक रूप से मम्मा ने धारण किया, इसलिए चलते फिरते भी सबसे न्यारी भासती थी। ऐसे लगता जैसे दूसरी दुनिया में खोई हुई है। मम्मा दूसरी दुनिया में खोई हुई है ऐसे लगता था। योग निष्ठ होने कारण उनकी उपस्थिति ही हर एक को सहज योगी बना देती। आने वालों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते तो हमें निरंतर प्रभु स्मृति में रहने का अभ्यास करना है, योग निष्ठ बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल से भट्टी आरंभ होगी और उसके लिए खास हमारी अरुणा बहन आई है। अरुणा बहन खड़ी होके सबको मिलो, वहाँ 15 दिन रहेंगी, 2 भट्टी का संचालन करेंगी। अरुणा बहन बड़ौदा में अटलाद्रा सेंटर के हैं। और इस बार अभी जो कल ग्रुप आ रहा है वो मीरठ का है, मीरठ मोदी नगर के पास है मीरठ, तो मीरठ का टर्न है इस बार, मीरठ का टर्न है। और मीरठ वाले आ रहे, कुछ तो आज ही आएंगे। कोई आए है क्या जो पहुंच गई है? मीरठ वाले हाथ उठाएं। अगर आएंगे तो शायद नीचे है, ऊपर आएंगे, बाकी तो सब कल ही आएंगे। अब शांति, अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।